मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी, प्यासा हो मैं प्यास बुझा, प्यासा हो
मुझको तुझसे,
मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी, मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी, प्यासा हो मेरी
फिर से तेरे पास आते, तेरे वचन को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते, पवित्र आत्मा नियंत्रण को चाहते, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 42वां पद, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 42वां पद। प्रार्थना के समय प्रभु के आत्मा ने इस बात के लिए अगुवाई की, इस बात को मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया कि प्रभु चाहता है कि आज हम इस वचन के ऊपर मनन करें। मैं कुछ और आपके साथ बांटना चाहता था। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42वां पद,
वे प्रतिदिन मंदिर में और
घर में उपदेश करने 42वां पद, और शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लालू रहे।
हालेलुया।
दूसरा
अध्याय 42वां पद, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42वां पद, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। आज मैं आपके साथ पर्वों के विषय में बांटना चाहता था, परंतु बार बार मुझे अंदर से स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं, आज प्रभु की मैच में भी भाग लेना है। और आज जब बहन ने इस बारे में प्रचार किया कि वचन हमारे लिए कितना महत्व है, उसकी वचन की भूख, सही में हम कहेंगे कि वचन की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, तो इस बात को प्रूव हो गया कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन के ऊपर आज मनन करें। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाला प्रभु स्वयं है, बोलने वाला प्रभु का आत्मा है, और प्रभु कहता है कि यदि आज तुम मेरे आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। हालेलुया।
हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की
जय।
ये छोटा सा मनन हम करेंगे, उसके बाद हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि जो प्रारंभिक कलीसिया के लोग थे, जब कलीसिया शुरू हुई, जब प्रारंभिक कलीसिया की शुरुआत हुई, उस वक्त उस कलीसिया के लोगों ने मुख्य रूप से ये चार बातें की, और इन चार बातों करने के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें उस कलीसिया में हुई जो आशीष परमेश्वर ने उस कलीसिया को दी। अगर आप इसके 43वें पद से पढ़ेंगे, देखिए वहां पर लिखा है 42 से आगे 43 पर, जब उन लोगों ने ऐसा किया तो क्या हुआ, सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हालेलुया। हालेलुया। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय हो, हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में अद्भुत काम हो, चिन्ह हो। हालेलुया। चिन्ह अद्भुत काम प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, लोगों पर भय छा गया, लोगों पर क्या छा गया, भय छा गया। मैंने कई बार अपनी सेवकाई के दौरान इस बात को महसूस किया है, और जब हम अभी मनाली गए थे, वहां पर भी जब हम एक पास्टर के यहाँ पर चर्च में गए, पास्टर शेर बहादुर, क्या नाम था,
बल बहादुर
बद्दी में गए थे हम, और वहां पर जब हम गए उनके घर पर प्रार्थना करने के लिए, तो ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित नहीं थे, मैं था, मेरी पत्नी थी, और चार या पांच जवान लोग थे, एक पास्टर थे, उनकी वाइफ थी। और जब हमने वहां पर प्रार्थना की, और जब मैंने वचन को प्रचार करना शुरू किया, प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां का पूरा जो माहौल था वो बदल गया। उन लोगों के ऊपर भय छा गया, हर कोई ये महसूस करने लगा कि ये वचन मेरे लिए है। और एकदम से वातावरण जो था वो चेंज हो गया। एक भाई वहां पर बैठा हुआ था, बहुत जवान, देखने में बहुत कठोर मन का लग रहा था, लेकिन जब प्रभु के वचन का हथौड़ा पड़ता है तो हर एक कठोर भाग टूट जाता है। मेरा वचन जो है हथौड़े के समान है, प्रभु नबी के वचन में लिखा हुआ। और वहां पर जब वो वचन बोला, वो भाई की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। और उसके बाद वो भाई आंखों से, वो जो प्रार्थना के वक्त प्रभु के आत्मा ने एकदम वचन बोलते बोलते बीच में स्ट्राइक किया, अब प्रार्थना का समय आ गया। मैंने वचन को वहीं पे क्लोज किया, प्रार्थना करने शुरू कर दी। जैसे प्रभु के आत्मा ने कहा, नहीं अब प्रार्थना का समय, वचन का समय खत्म हुआ, मैंने बाइबल बंद की और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्रार्थना करना शुरू किया, वो भाई ने रो रो कर प्रार्थना करना शुरू किया। और उसके बाद जब प्रार्थना खत्म हो गई तो बिल्कुल सब कुछ चेंज था, सबकी आंखें गीली, सब जो कहने लगे हमें शरीर में चंगाई का अनुभव हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। और उसके बाद वो भाई जो था, वो पास्टर जी ने कहा, हमारे चर्च के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप जब चाहे हमारे चर्च में प्रचार करने, गीतों को गाने के लिए आ सकते हैं, बिलीवर्स चर्च के पास। और उसके बाद वो जो भाई जिसने रोकर प्रार्थना की, वो भाई हमको छोड़ने के लिए बस अड्डे तक आया। उसको बोला था कि रेड लाइट तक छोड़ कर आना, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, वो हमको बस अड्डे तक छोड़ के चला गया। मैंने बाद में घर आके बताया, मैंने कहा उसका बस नहीं चला रही तो हमें वहां जहां हम रुके हुए थे वहीं तक छोड़ कर आता। हालेलुया। ये प्रभु का वचन जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसमें सामर्थ है, और प्रभु अपने वचन के द्वारा काम करता है। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि जैसे प्रारंभिक कलीसिया के लोगों ने वचन को महत्व दिया, मुझे और आपको भी वचन को महत्व देना है। ये सिंपल सी बात है। मैंने एक उदाहरण दिया, अभी मैं यूपी में था, वहां एक गांव में, और वहां पर शादी में मैंने गीत गाए। उसके बाद वो शादी के परिवार के लोगों ने एक थैंक्स गिविंग की मीटिंग रखी। उस धन्यवाद की प्रार्थना में मैं गया, दूल्हा दुल्हन वहां पर थे, और मैं जब उनको प्रचार कर रहा था, मैंने मत्ती 22:37 वहां पर प्रचार किया कि सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना है। और उसके बाद जब मैंने वो प्रचार किया, प्रचार करने के बाद वो वहां पर मैंने एक उदाहरण दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम वचन को, एक तो होता है वचन को पढ़ना, एक होता है वचन को मनन करना, और एक है वचन को ऑब्जर्व करना, अपने अंदर ग्रहण करना, है ना, ऑब्जर्व करना, और फिर उसके अनुसार, वचन के अनुसार चलना। सेम बात है, एक प्लेट है और उस प्लेट के अंदर एक रोटी रखी हुई है। पढ़ना यानी उसको देखना, रोटी को देखना। रोटी को देखने से कितने लोगों को ताकत मिल जाएगी शरीर में? किसी को नहीं मिलेगी। हाँ, और अगर ज्यादा देर तक रखी रही तो क्या होगा? ठंडी हो जाएगी। हाँ, इसीलिए देखना नहीं। बहुत से लोग वचन को देखते रहते हैं। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को मीटिंग में, बड़ी बड़ी मीटिंग कन्वेंशन होती है ग्राउंड वगैरह में, चेयर के ऊपर लोग बैठे हुए और वचन देखा, वो पास जाके देखो तो वो सो रहा होता है। हाँ, मैंने महसूस किया है, बड़ी बड़ी कन्वेंशन होती है ना, जैसलीन पास्टर की, पॉल दिनाकरण की, और वो चेयरों के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, बहुत देर से वही पेज खुला हुआ है, ऐसे लेटे हुए, पास जाके देखा तो वो सो रहा था। तो ये वचन को देखना नहीं है, वचन को खाना है। क्या करना है? वचन को
खाना है।
वचन को खाना है, देखना, मनन करना। देखिए क्या, आपने वचन को खाया, उसके बाद आप उसको सटक लेंगे क्या? थोड़ी देर चबाएंगे ना, यानी उस पर अध्ययन करना, उसको सोचना, चुइंग करना, चुइंग, उसको थोड़ा चबाना, मनन करना। जैसे हमने पढ़ा वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, अब इसको अगर आप इसी एक लाइन को प्रेरित, फिर प्रेरित कौन होता है? वो प्रेरित से शिक्षा क्यों पाते थे? शिक्षा पाना क्या होता है, प्रचार क्या होता है, शिक्षा में और प्रचार में क्या अंतर है? फिर आप थोड़ा सा सोचेंगे, शिक्षा क्या होती है, प्रचार क्या होता है, प्रेरित क्या होता है, कौन लोग ऐसा करते थे, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको चबा रहे, उसको मनन कर रहे। हालेलुया। आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उस पर अध्ययन करना है, उसको मनन करना है, उसके बाद उसको रिसीव करना है, उसको ग्रहण करना है। अगर आपने ग्रहण नहीं किया तो क्या है, फिर आपने तो उल्टी कर दी, आपने तो उसको थूक दिया, आपने उस रोटी को बाहर निकाल दिया। रिसीव करने का मतलब है कि आपने उस पर हां करी है, आपने उसको यस किया है। यस, वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, मैं भी प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए प्रभु तेरे आत्मा को अपने आप को समर्पित करता हूं, और हम उस वचन को रिसीव कर लेते हैं। हालेलुया,
हालेलुया।
आप समझ रहे हैं इस बात को, यह बहुत जरूरी है। रोटी को देखना नहीं है, रोटी को केवल चबाना नहीं है, उसको अपने अंदर रिसीव करना है। इसी तरह से वचन को केवल देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको मनन भी करना है। मनन करने के बाद उसको रिसीव करना है अपने अंदर, उसको ग्रहण करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तब उसकी ताकत हमारे शरीर को मिलेगी। और जब वो सामर्थ मिलेगी, जब वो अगुवाई मिलेगी, तो उस सामर्थ का इस्तेमाल फिर परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हालेलुया,
हालेलुया।
बहुत सारे लोगों को ताकत मिलती है लेकिन वो उस ताकत का इस्तेमाल सही नहीं करते। मैं एक बहन थी और वो प्रार्थना कर रही थी, छोटी बच्ची, ज्यादा बड़ी नहीं थी, और सेमिनार था सितारगंज में, 3 दिन का पवित्र आत्मा का सेमिनार उत्तराखंड में। सेमिनार का पहला दिन हुआ और पहले दिन में करीब 35 लोगों ने पहली बार अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना की, प्रभु के अभिषेक और सामर्थ को पाया। बिना हालेलुया बोले, बिना ताली बजाए, सब लोगों ने जैसे ही पवित्र आत्मा को रिलीज किया, सबने अन्य भाषा बोलना शुरू किया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक छोटी बच्ची थी, बड़ी रो रो के फिर मेरे पास, जिस कमरे में मैं रुका हुआ था, वहां पर एक पास्टर आया। उन्होंने कहा एक छोटी बच्ची आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, उसको भेज दो। वो बच्ची मेरे पास कमरे में आई। जब वो मेरे पास आई तो उसने कहा, पास्टर जी, आज सब लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना की, मैंने क्यों नहीं की? वो रो रही थी। मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं प्रभु से मांग रही हूँ। मैंने कहा 3 दिन है अभी, एक ही तो दिन हुआ है, प्रभु से मांगो, प्रभु जरूर देगा। और ज्यादा छोटी भी नहीं थी वो, रिबेका, रिबेका से, रिबेका के बराबर ही होगी, रिबेका से थोड़ी बड़ी हो, लेकिन उसके अंदर वो भूख और वो प्यास थी कि मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहती हूँ। और उसके बाद दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन ने भी उसने बहुत रो रो के प्रार्थना की, बहुत अच्छे से उसने प्रार्थना की। और फिर लेकिन वो दूसरे दिन मेरे पास नहीं आई, लेकिन मैं जानता था कि जहां जो धन्य है वे जो धर्म के भूख के और प्यास से तृप्त किए जाएंगे, है ना। तीसरा दिन था, एक दिन में 3 सेशन होते थे, 8 सेशन खत्म हो चुके थे, तीसरे दिन का 9वां आखिरी सेशन बचा हुआ था। हालेलुया,
हालेलुया।
प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, इसमें तेरे को प्रचार नहीं करना, केवल प्रार्थना करनी है। मैंने कहा इस सेशन में कोई प्रचार नहीं होगा, इस सेशन में प्रार्थना होगी, सब लोग घुटनों पे आ जाओ। घुटनों पे आने के बाद जैसे मैंने उस बच्ची के ऊपर हाथ रखा, उस बच्ची ने अन्य भाषा बोलना शुरू, और जो वो शुरू हुई सब खत्म हो गए, वो खत्म ही नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या ऐसी गवाहियां सुनकर आपके रोंगटे नहीं खड़े होते? मेरे तो बोलते हुए भी खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। देखिए प्रभु की भूख और प्यास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हम जब तक अपने जीवन में इस बात को, मेरी बहन कह रही थी मेरे से एक बार फोन पे कि अब मैं निकलना चाहती हूँ सेवा के लिए, अब मैं निकलना चाहती हूँ। वास्तव में मैं आप सबसे एक बात को कहना चाहता हूँ, जब तक मैं सेवा के लिए निकला नहीं था, मैंने अपनी आंखों के सामने इतने बड़े बड़े मौजूदे, इतने बड़े बड़े अद्भुत काम होते हुए नहीं देखे। ग्राउंड में आना बहुत जरूरी है। ग्राउंड में आकर थ्योरी प्रैक्टिकल हो जाती है। हालेलुया,
हालेलुया।
तब हमें पता लगता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। मैं पहले केवल मैगजीन में पढ़ता था, गवाहियां देखता था, और मैं सोचता था प्रभु कितने अद्भुत तरीके से काम करता है। लेकिन अब जब मैं फील्ड में निकला और मैंने आंखों के सामने वो चीज होती हुई देखी, तो ये एक अलग अनुभव था। मेरा खुद का विश्वास जो है वो बहुत ही मजबूत हो गया। मेरी पत्नी से पूछिए, जब हम गए थे, वो नाम तो हनीमून का था जब हम गए थे, परंतु वो हनीमून नहीं था। हमने कम से कम 7 या 8 घरों में प्रार्थना सभा की थी। हालेलुया। वो पास्टर वहां पे बोले थे तो घूमने के लिए आया यहाँ पर, और वहां प्रार्थना ही प्रार्थना, और प्रभु ऐसे काम कर रहा है, जहां 2 लोग हैं वहां भी काम हो रहा है, जहां 10 लोग हैं वहां पर भी काम हो रहा है। लोग रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, मन छीदे जा रहे हैं, लोग परिवर्तित हो रहे हैं, आत्मा का अभिषेक पा रहे हैं, और वहां पर चंगाइयां हो रही है। प्रभु अद्भुत तरीके से लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। प्रभु के लिए आज भी आराधना के वक्त जब हम आराधना कर रहे थे, प्रभु के आत्मा ने इस बात को कहा कि मुझे तेरी खूबी नहीं चाहिए, मुझे तेरे योग्यता नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरी उपलब्धता चाहिए। क्या तू मेरे लिए उपलब्ध है? क्या तू मेरे लिए मौजूद है? अगर तू मेरे वचन को पढ़ने के लिए मौजूद नहीं है तो फिर तू मेरे वचन की आशीष को कैसे पाएगा? पहली बात उन्होंने क्या की, वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, उसमें लौलीन रहते थे। हम वचन को पढ़ने के लिए मौजूद हैं या नहीं है, बात यह है। हम क्या चीज करने के लिए आज मौजूद हैं? हम नहाने के लिए मौजूद हैं, खाने के लिए मौजूद हैं, घूमने के लिए मौजूद हैं, लेकिन क्या प्रभु के वचन की शिक्षा पाने के लिए हम मौजूद हैं या नहीं है? आज धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के उपस्थिति में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्य हैं। देखिए वो लोग क्या करते थे, वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, और इस वक्त आप भी एक प्रेरित से ही शिक्षा पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें प्रभु के चुने हुए लोगों से वचन को सीखना है। कई बार क्या होता है, कई लोगों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो अच्छा प्रचार करता है तो मैं भी अच्छा प्रचार करूंगा। हर कोई प्रचार कर सकता है, ये बात ठीक है, परंतु पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब आप सीखेंगे 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 तब आप जो है उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां आप दूसरों को सिखा सके। पहले सीखना है फिर सिखाना है। हालेलुया, सब बोलिए, पहले सीखना है फिर सिखाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेके जाते हो हर जगह। मैं कहता हूं अभी पहले उसे सीखना है फिर उसको सिखाना है। हालेलुया, अभी सीखने का वक्त चल रहा है। पहले हमको सीखना है उसके बाद फिर हम लोगों को सिखाना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है कि हम प्रभु के लोगों से प्रभु के वचन को सीखें। प्रभु की प्रारंभिक कलीसिया के लोगों ने क्या किया, 42वें पद में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन रहे, उन्होंने वचन को महत्व दिया। वो वचन को पढ़ने के लिए उपलब्ध थे, वो वचन को मनन करने के लिए उपलब्ध थे, वो वचन को रिसीव करने के लिए उपलब्ध थे, वो वचन को सीखने के लिए उपलब्ध थे। हालेलुया, वो वचन को सीखने के लिए उपलब्ध थे। प्रारंभिक कलीसिया के बीच में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। यहां देखिए, यहां पर हमने पढ़ा 43 पद में, लोगों पर बड़ा भय छा गया, बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुए। 44वें पद में लिखा है, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे क्या थे, प्रसन्न। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, संगति करेंगे, प्रभु की मेज में भाग लेंगे, प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, तो क्या होगा, लोगों पर भय छा जाएगा, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होंगे, प्रभु कलीसिया की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, उस कलीसिया की सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा जिस कलीसिया के लोग परमेश्वर के प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, संगति रखते हैं, रोटी तोड़ते हैं और प्रार्थना में लौलीन रहते हैं। प्रभु उस कलीसिया की, उन लोगों की सारी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है, और लोग उनसे क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लोग उनसे क्या रहते हैं, प्रसन्न। हम टीवी के ऊपर एक भाई का संदेश सुन रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को वो संदेश छुआ, फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। उन्होंने इस बात को बताया कि दुनिया के लोगों के पास बहुत सारी चीज है लेकिन हमारे पास परमेश्वर का फेवर है। हालेलुया, हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का फेवर हमारे पास है, उसका अनुग्रह हमारे पास है। ये बहुत ही अद्भुत बात है, ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही अलग, बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर है। पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परंतु हमें विश्वास करके उस अनुग्रह को, सामर्थ को रिसीव करना है। हालेलुया।
हालेलुया।
और एक बात और इसमें लिखी है बहुत अच्छी, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। कलीसिया की जरूरतें पूरी होंगी, कलीसिया में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होंगे, कलीसिया गिनती में भी बढ़ेगी। हालेलुया। सब बोलिए, कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार होंगे, कलीसिया की सारी जरूरतें पूरी होंगी, और कलीसिया प्रतिदिन गिनती में बढ़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। वो कब होगा? ये सारी बातें कब होंगी मेरे प्रियो? ये सारी बातें तब होंगी जब हम 42वें पद को अपने कलीसिया में पूरा करेंगे। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। वो प्रारंभिक कलीसिया के लोग, ये दूसरा ही पद है, ये दूसरा ही पद है जहां पर दूसरे तीसरे चौथे पद में पवित्र आत्मा पेंतिकोस के दिन के बारे में लिखा है। दूसरे पद का पहला पद देखिए, जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। हालेलुया। पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा और सब लोग अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे, आग के समान जीभें फटती हुई नजर आई, उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर प्रारंभिक कलीसिया की शुरुआत हुई। वहां पर उन लोगों ने केवल अन्य अन्य भाषा बोलने पर अपने आप को सीमित नहीं किया। समझने वाली बात है, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे तो वहां पर उन्होंने अपने आप को सीमित नहीं किया कि हमें प्रभु का अभिषेक मिल गया, हम सब अब गैर जुबानों में प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं, वहां पर अभिषेक मिलने के बाद, सामर्थ मिलने के बाद, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करने के बाद, अब वे लौलीन रहते थे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, अब वे लौलीन रहते थे संगति करने में, अब वे लौलीन रहते थे रोटी तोड़ने में, अब वे लौलीन रहते थे प्रार्थना करने में। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो थे उस पवित्र आत्मा के सेमिनार में और बहुत सारी जगह ये पूछते हैं कि पास्टर जी, हम अन्य अन्य भाषाओं में तो प्रार्थना करते हैं लेकिन कभी हमने अन्य भाषाओं का अर्थ नहीं बताया। फिर वहां पर जब एक व्यक्ति ने पूछा, मैंने कहा सब लोग आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। सब ने प्रार्थना करनी शुरू करी। मैंने कहा हमारे बीच में एक ऐसी बहन है जो इस वक्त खड़ी होकर अन्य भाषा का अर्थ बताना शुरू करेगी, जैसे प्रभु के आत्मा बोलता है मैं वैसे बोलता हूं। और एक बहन खड़ी हुई और उसने अन्य भाषा का अर्थ बताना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने देखिए, प्रभु महान है, वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और उस बहन से मैंने पूछा कि आपने आज तक कभी अन्य भाषा का अनुवाद पहले किया था? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन प्रभु ने वो चिन्ह देकर वहां पे इस बात को प्रूफ किया। हालेलुया। परमेश्वर जो है, देखिए परमेश्वर हमें एक साफ तरह से इस बात को समझाता है, थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो बहुतों के स्वामी बनाए जाओ। वो पवित्र आत्मा के 9 वरदान कहीं बाहर नहीं है, वो 9 के 9 वरदान आपके अंदर हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा कभी किसी को नाप नाप के नहीं दिया जाता, किसी को 2 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को 1 वरदान, किसी को 5, ऐसे नहीं रहता। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा तो पूरे 9 फल 9 वरदानों को लेकर उतरा। और जब पवित्र आत्मा का मंदिर बनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो पूरे वरदानों को लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर उनका मैनिफेस्टेशन होना है, यानी वो वरदान है तो अंदर लेकिन बहने चाहिए। हालेलुया। और जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा की नदी बहनी शुरू होती है, वहां से एक नहर बहनी शुरू होती है। हालेलुया। वहां से एक नहर बहनी शुरू हो जाती है, और यदि आप उसको रोकेंगे नहीं और उसको बहने देंगे तो दूसरा वरदान बहना शुरू हो जाएगा, और जब आप उसको रोकेंगे नहीं और उसको बहने देंगे तो तीसरा वरदान बहने लगेगा। लोग कहते हैं कि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं लेकिन आज तक कभी हमारे द्वारा चंगाई नहीं हुई, हमने भविष्यवाणी नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम थोड़े में ही विश्वास योग्य नहीं हो। तुम बताओ, क्या तुम 1 घंटा रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो? नहीं, नहीं करते, तो फिर तुम भविष्यवाणी कैसे करोगे? तुम थोड़े में ही वफादार नहीं हो तो बहुतों के स्वामी कैसे बनाए जाओ? हालेलुया। इसीलिए यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो कम से कम एक घंटा रोज अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जब आप थोड़े में वफादार रहेंगे तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे दूसरा वरदान बहने लगेगा, फिर आप उसमें वफादार रहेंगे तीसरा बहने लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर को अपने लिए मौजूद लोग चाहिए। वरदान दे दिया, आप मौजूद नहीं है, अन्य भाषा लेके खराटे मार रहे हैं रजाई के अंदर, अलार्म बजा लेकिन उठे नहीं है, प्रार्थना का समय है, मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है तो प्रभु काम कैसे करेगा? तो प्रभु को आलसी लोग तो नहीं चाहिए। मूर्खों को तो प्रभु इस्तेमाल कर सकता है लेकिन आलसी को कभी इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। मूर्ख को तो प्रभु इस्तेमाल कर लेगा अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मा के द्वारा, लेकिन आलसी को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर के लिए हमें मौजूद होना है। हालेलुया। सब बोलिए मुझे परमेश्वर के लिए
मौजूद होना है।
अगर आप एक घंटा रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, मैं आपको 40 दिन का समय देता हूं और प्रभु की वेदी से इस बात की घोषणा करता हूं, यदि 40 दिन तक आज से आप शुरू करेंगे एक घंटा रोज प्रार्थना करना, 40 दिन के बाद आप भविष्यवाणी करेंगे, यू विल बी अ प्रोफेटिक वॉरियर। हालेलुया। यू विल बी अ प्रोफेटिक। जो भी आपके अंदर वो प्रोफेसी है, जो भी आपके अंदर वो ज्ञान का, वो समझ का जो आत्मा है, वो बहना शुरू हो जाएगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आप वचन का प्रकाशन पाएंगे। लेकिन आपको थोड़े में विश्वास योग्य रहना है, थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। सब बोलिए मुझको थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। देखिए वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, संगति रखते थे। संगति रखना, वचन को पढ़ना, मनन करना, वचन को खाना, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना, प्रभु के चुने हुए लोगों के द्वारा वचन को सीखना, उसके साथ साथ संगति रखना। संगति रखना किससे? संगति रखना प्रभु के लोगों से। संगति रखना, हालेलुया। वो लोग किस में लॉलिन रहते थे? वो प्रभु के लोगों से संगति करते थे। वो 120 लोग जो पहली मंजिल पे इकट्ठे थे, जब वो लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, उसके बाद वो लोग इकट्ठे होकर संगति किया करते थे। हालेलुया। वो लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे। और मेरे मन में भी आया, हमने एक शेड्यूल भी बनाया है कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, जैसे लेडीज प्रेयर मीटिंग चलती है, फास्टिंग चलती है, इसी प्रकार हम लोग कोशिश करेंगे कि जब मैं यहाँ पर हूँ दिल्ली में, तो हम लोग आज भी आपसे, आप इस हफ्ते में कौन चाहता है कि उसके घर पे प्रार्थना की जाए, वो आज बता सकता है। संडे को हम पूछेंगे आपसे, अगर जैसे इस संडे, फ्राइडे को, फ्राइडे का दिन कौन सा दिन ठीक रहेगा? इसी वेडनेसडे को, ठीक है। तो इस वेडनेसडे को क्या नाम है आपका? सिस्टर सुमन के यहाँ पर प्रार्थना है। कितने लोग संगति रखने में लॉलीन है वो वहां पर आएंगे। हालेलुया। संगति रखनी है, और ऐसे हम अनाउंस करेंगे हर संडे वाले दिन ही, जब यहाँ पर है, मैं हूं यहाँ पर, तो हम अनाउंस करेंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर हम लोग उस हफ्ते में वहां पर प्रेयर मीटिंग के लिए जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। लिखा है ज्यों ज्यों उस दिन को तुम निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी ऐसा
किया करो।
इकट्ठा होना ना छोड़ो, बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हमारे देश में तो अभी भी हमें इतनी स्वतंत्रता है कि हम इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं। चाइना के बारे में, भूटान के बारे में, ऐसे देश हैं जो जो ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर चाइना में खासतौर से मैंने, और भूटान में मैंने इस गवाही को पढ़ा, वहां पर लोग 20-25 फीट नीचे
अंडरग्राउंड
बेसमेंट में जाकर छिपकर इकट्ठे होते हैं, रात को 2-3 बजे भूटान में। और कितने लोगों को वहां पर मार दिया गया जो प्रभु के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने 1000 वर्ष का शासन पा लिया। हालेलुया। वो देखिए, वो लोग जो हैं, वो लोग इतना परसिक्यूशन होते हुए भी, इतना सताव होते हुए भी, वो लोग रात को उठ उठ के इतना जमीन के नीचे छिप छिप के जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें, हम तो लोकतांत्रिक देश में हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? हमें इस बात को देखना है, समझना है, इस बात को हमें अपने अंदर सीखना है कि हम लोगों को संगति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम लोगों को आपस में संगति करना बहुत जरूरी है, रोटी तोड़ने। आज हम प्रभु की मेज में भाग लेने जा रहे हैं। हम इस बात को समझें कि जो प्रारंभिक कलीसिया के लोग थे, वे लोग जब भी इकट्ठे होते थे, यहां पर देखिए आगे भी लिखा हुआ है इसके 46वें पद में, वे एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिदाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। हम जब प्रभु, वो जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:35 में, जीवन की रोटी मैं, और उस जीवन की रोटी को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को खाने के लिए दिया। वो जीवन की रोटी है। प्रभु की जब देह हम खाते हैं तो ये सोचिए हम जीवन की रोटी को खा रहे हैं, हम जीवन के जल को पी रहे हैं। हालेलुया। जब आप महसूस करेंगे, जैसे आपने प्रभु के लहू का प्याला लिया और आप महसूस करते हैं यीशु का लहू मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता है, इस लहू में मेरे रोगों को मिटाने की शक्ति है, और उसको रिसीव करते हैं, एकदम आपको चंगाई मिल गई। यू विल रिसीव द हीलिंग। हालेलुया। एकदम से आपको चंगाई मिल जाएगी। देखिए वहां पर लिखा हुआ है, साफ लिखा है कि हम प्रभु की देह को पहचाने। प्रभु कहता है मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरी देह खाता, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और अंतिम दिन में उसे फिर से जिला उठाऊंगा। प्रभु की देह हमको खानी है, प्रभु का लहू जो है वो हमको पीना है, और एक विश्वास के साथ कि वास्तव में ये प्रभु की देह है, वास्तव में ये प्रभु का लहू है। बहुत सारे लोग जो है उसको केवल एक रोटी और एक रस समझते हैं। आप जानते हैं इसलिए वो प्रभु की मेज में आने से पहले भी बीमारी की हालत में आते हैं और लेने के बाद भी बीमारी की हालत में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु की देह को नहीं पहचाना और उसके लहू को नहीं पहचाना। तुम अगर पहचानते कि यीशु का बदन है और यीशु का बदन सोच के उसको खाते, तो क्या यीशु के बदन में ताकत नहीं है? क्या यीशु के लहू में ताकत नहीं है? तुमने सोचा ही नहीं कि वो यीशु का बदन है, तुमने सोचा, विश्वास ही नहीं किया वो यीशु का लहू है। अगर विश्वास करते कि ये यीशु का बदन है, ये यीशु का लहू है, तो उसमें सामर्थ है। वो स्त्री वो कहती थी, यदि मैं यीशु के दामन को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु के दामन को छूने से जब एक स्त्री चंगी हो सकती है, तो क्या उसका बदन खाने से और उसका लहू पीने से हम चंगे नहीं हो सकते? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अर्थी को छूने से एक मुर्दा जीवित हो सकता है, उसके बदन को खाने से क्या हमारे शरीर की तकलीफें दूर नहीं हो सकती? ये सारी बात केवल विश्वास की है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहा, यीशु ने, जब वो चंगी हो गई, 46वें पद में, 8:46 है शायद लूका, प्रभु ने कहा तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो गई। हाँ, 8:46 है शायद, देखिए क्या लिखा है वहां पे लूका, उसमें लिखा है जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। yes. जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। पढ़िए क्या लिखा है, यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। क्या चाहिए यीशु मसीह को? विश्वास चाहिए। हालेलुया। पढ़िए,
परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैं जान लिया है कि मुझ में ये सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु की मेज में भाग लेने के लिए आते हैं, अपने आप को जांचते हैं, आप प्रभु के उस बलिदान को याद करते, प्रभु के प्रेम को याद करते हैं। आज जब आप प्रभु की मेज में भाग लेते हैं, तो आज विश्वास के साथ लीजिएगा, आज विश्वास के साथ लीजिएगा। हालेलुया। आज विश्वास से उसके बदन को खाइएगा, आज विश्वास से उसके लहू को पीजिएगा, और फिर अपने आप को, अपने शरीर को जांच कर देखिएगा। आप देखेंगे आपका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। हालेलुया, आमीन। ऐसा होगा, आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो जाएगा। प्रभु कहते तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु
के पास जब हम आते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज जब हम प्रभु के पास आए तो हम एक विश्वास के साथ आए, क्योंकि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज जब आपने इस वचन को सुना है उस पर विश्वास कीजिए। उसके बदन को और उसके लहू को खाना बहुत जरूरी है। पता है ये हमारी ताकत है। उसका बदन जब हम खाते हैं तो हमारी ताकत है, उसका लहू जब हम पीते हैं तो वो हमारी ताकत है। तेरा लहू यीशु मसीहा मेरी पनाह है, वो हमारी पनाह है, वो हमारी ताकत है। हालेलुया। और इसके साथ साथ चौथी बात जो उन्होंने की, वो प्रार्थना करने में लौलीन रहे, वो प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आइए मेरे प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। ये वचन जो आज हमने सुना है, जो बहन के द्वारा हमने वचन सुना और जो आपने मेरे द्वारा वचन को सुना है, इस वचन को कुछ देर इसके बारे में सोचिए, उस पर मनन करें, उस पर अध्ययन करें कि प्रभु का वचन हमारे लिए कितना जरूरी है, उसके वचन को सीखना हमारे लिए कितना जरूरी है, प्रभु के बदन को खाना, उसके लहू को पीना हमारे लिए कितना जरूरी है, प्रार्थना में लौलीन रहना हमारे लिए कितना जरूरी है, संगति करना हमारे लिए कितना जरूरी है। कुछ समय हम अपने आप को जांचें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इस कलीसिया में, डिवाइन वर्शिप फेलोशिप में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने चाहिए। हालेलुया। हम चाहते हैं कि ये वर्शिप, डिवाइन वर्शिप फेलोशिप, ये प्रभु की जो संगति है, ये प्रभु की जो कलीसिया, ये कलीसिया गिनती में बढ़नी चाहिए। हालेलुया। हम चाहते हैं कि ये कलीसिया गिनती में बढ़नी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस कलीसिया की सारी जरूरतें प्रभु पूरी करे। हालेलुया। उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम सब लोग प्रभु के वचन को महत्व दे, उसके वचन को सीखे, संगति करें, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। 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 हालेलुया।